श्री गुरवे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोषिसंविदधतं पिष्टपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दाम तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम शरणार्थिके आज हम लोग अक्रूर घाट ब्रह्म हरद भातरौल इत्यादि दर्श की कथाओं को हम लोगों ने वहां पर सुना और दर्शन किया। वहां की महिमा, वहां की तत्व कथाएं सभी वहां पर कहा गया। इसलिए मैं अब मनः शिक्षा के उपदेश को हम लोग आरंभ कर रहे हैं। कल बहुलाष्टमी है, आज बहुलाष्टमी है। कल हो गया तो कर लिया कुछ लोग, वैष्णव लोग आज भी कर सकते हैं, उनका प्राकट्य दिवस है बहुलाष्टमी। बाई स्मार्ट यस्टरडी इट वेंट एंड बाई वैष्णव थ्योरी टुडे इज बहुलाष्टमी द आविर्भाव अपेरेंस डे ऑफ राधा कुंड। सो मेनी विल गो, कर्मी ज्ञानी योगी भक्त ऑल कैन गो एंड दे गो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जतने न ते भजन दर्पणा नाम दर्पण नाम भाष्यम शिक्षाद श्लोक सहितम प्रपठन्तु भक्त्या जेशांग सराग भजने ब्रजराज सुनो शिरूप शिक्षा मतानुगमनानुराग। जतने ते भजन दर्पण नाम भाष्यम शिक्षा श्लोक दशकम प्रपठन्तु भक्त्या। जिन लोगों को रसाचार्य स्वरूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार ब्रज रीति नीति का अवलंबन कर राधा कृष्ण के जुगल अनुराग में भजन करने की तीव्र लालसा है, दोज हु वांट टू इंटर इन रागात्म भक्ति एंड दोज हु वांट अकॉर्डिंग टू द रूप गोस्वामी शिक्षा ब्रज रीति नीति का अवलंबन कर to follow them and to do bhajan of Radha and Krishna anurag maya prem. For those, they should read एंड हियर मनः शिक्षा विथ भजन दर्पण भाष्य बाय भक्ति विनोद ठाकुर. If they will not follow this paddhati, process, they cannot enter in raganuga bhajan. So we must try to follow. Hum log dusre shlok ko bhi samapt kar chuke hain. अब तीसरा श्लोक. यदिच्छे आवासं ब्रजभू विसरागम प्रतिचनु द्वदन्दम तच्छेत परिचरतम अभिलाष आराध अभिलषे स्वरूपम सीरूपम सहगणमिह तस्याग्रजम अपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मरणम तदा त्वं शृणु मनः. प्यारे भाई मन, प्रेम से मेरी बात सुनो. भैया, यदि रागात्मिका भक्ति के साथ तुम हमको ब्रज में वास करने की लालसा है और राधा कृष्ण रूप नव जुगल की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो जन्म जन्म में तुम स्वरूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी और उनके अग्र सनातन गोस्वामी आदि चैतन्य महाप्रभु के परिकरों को, कृपा पात्रों का निष्ठ रूप में स्मरण करो और उनको प्रीति पूर्वक प्रणाम करो. रोज यदि ब्रजवास में रहकर अनुराग के साथ में राधा कृष्ण का भजन करना है और कृष्ण की प्रेममयी रागात्मी भक्ति लाभ करने की इच्छा है, तो स्वरूप दामोदर, श्रीरूप गोस्वामी, श्री सनातन आदि शब्द से सबको, राय रामानंद इत्यादि और महाप्रभु के जो सेवक वृंद हैं षड गोस्वामी में से, इन सब का स्पष्ट रूप से स्मरण करो डेली. उनको प्रतिपूर्वक प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो. भजन दर्पण दिग्दर्शनी वृत्ति. यहां प्रश्न होगा, जिस किसी भी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ले लिया और शिक्षा लेकर आगात्मिक भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, किसी भी संप्रदाय के, चार वैष्णव संप्रदाय, उन चारों वैष्णवों से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करके रागात्मिका भक्ति ब्रजवास की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसी श्लोक को ये तीसरे श्लोक में बतलाया गया. नहीं होगी. दूसरे संप्रदाय के लोगों के से दीक्षा और शिक्षा लेकर राधा कृष्ण जुगल की रागात्मिक भक्ति अर्थात ब्रज प्रेम का दान करने वाले, उनके नितांत गुण रहस्यों और प्राप्ति के साधनों के प्रकाशक महाबदान्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र अंतरंग प्रियजन स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद आदि पूर्व आचार्यों, ये का स्मरण करो, प्रणाम करो. क्यों? ये उस महादुर्लभ ब्रज प्रेम के भंडारी और संरक्षक हैं. उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा और प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्रज की रीति नीति, ब्रजवास की पद्धति, जुगल प्रेम प्राप्ति के निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान विश्ववासियों को दिया है. वो लोग नहीं यदि होते रूप गोस्वामी उनके गण, तो इस महादुर्लभ प्रेम की बातें नहीं कोई लिख सकता, तो अपने ग्रंथों में दिया है, अपनी शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया है। अतः उनके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किए बिना रागात्मिक भक्ति नहीं होगी और नहीं होगी। अब सरागम, इस श्लोक में लिखा है सरागम। सरागम माने रागात्मिक भक्ति। साधारण भक्ति के साधन और सिद्धि की तीन अवस्था है। साधारण भक्ति, साधन भक्ति की, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तीन अवस्था। साधन भक्ति का परिपाक होने पर भाव भक्ति होती है और भाव भक्ति परिपक्व अवस्था में ही प्रेम भक्ति कहलाती है। फिर भक्ति तत्व के मर्मज्ञ रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बड़े ही सूक्ष्म विवेचन के आधार पर प्रेम उदय के कुछ क्रम का उल्लेख किया है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सैत ततो निष्ठा रुचिस्तत अथाशक्ति ततो भाव तत प्रेमा भुदंचति साधका नामयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवित कर्मा। सबसे पहले साधु संघ में शास्त्र श्रवण, इसके पहले भी है सेवा। क्या सेवा? भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते ससंग प्राप्तते कुंभी पूर्व जन्म सुकृति संचितई। वैष्णव सेवा भगवत संबंधी कोई तद्वस्तु हो उसकी सेवा इत्यादि के द्वारा सुकृति होती है, तब साधु संग। और साधु संग में श्रमण करते 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 श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद भजन की रीति नीति सीखने के लिए द्वितीय साधु संघ होता है। इसके पहले गुरु पदाश्रय, फिर साधु संघ, तत्पश्चात भजन क्रिया आरंभ हो गई, अनर्थ क्रमशः निवृत्ति होने लगी, उसके पश्चात भजन में विक्षेप रहित नई रंतर्ज क्रमशः आता जाता है। विक्षेप रहित लय विक्षेप प्रतिपत्ति कषाय इत्यादि, फिर रुचि भजन में बुद्धिपूर्वक अभिलाषा, उसके पश्चात आसक्ति स्वाभाविक आकर्षण भजन और भजनीय दोनों के प्रति, तदनंतर भाव और तत्पश्चात प्रेम उदित होता है। साधकों में प्रेम आविर्भाव का यह क्रम है। अब साधक साधकों के साधन के समय में वैधि या अथवा रागानुराग भेद से भक्ति भी दो प्रकार की होती है, प्रारंभ से ही, और फल के समय में भी वैधि साधन भक्ति से उदित प्रेम और रागानुगा साधन भक्ति से उदित प्रेम में भी एक सूक्ष्म भेद होता है। साधन भक्ति से भी प्रेम होता है, वह एक प्रकार का प्रेम होता है, कुछ ऐश्वर्य मिश्रित, और रागानुगा साधन भक्ति से उदित प्रेम उस ब्रज तक प्राप्ति करा देता है। अब रूप गोस्वामी का वैधि भक्ति किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी कहते हैं। हु विल ट्रांसलेट? रामचंद्र, वेर इज अरण्य अरण्य महाराज सिख?
Working very hard today. I told him to come.
आ जाइए।
भाव के केवल प्राप्त करेंगे
नहीं, ऐसा तो नहीं।
अभी बोले ना केवल रूपानुगम वैष्णव ही ब्रज का,
और रूपानुगम वैष्णव नहीं, रागानुगम,
रागानुगम। और कोई जैसे संप्रदाय के लोग वृंदावन नहीं पाएंगे?
कौन पाएगा?
जैसे यहाँ पर जो भी और संप्रदाय के वैष्णव हैं,
कौन नाम लो?
जैसे राधा वल्लभी हैं, बाकी बिहारी हैं, ये सब रसिक संप्रदाय,
वो तो द्वारकावासी जैसा प्रेम करते हैं,
उपासना करते हैं।
हाँ, तो उससे कैसे ब्रज का भाव हो जाएगा? यहाँ पर ब्रज में रहने पे भी वो स्वकिया जैसा मानेंगे तो वो कैसे होगा?
द्वारका तो चाहते नहीं है और ब्रज में ही
द्वारका नहीं चाहते। हाँ, तो इसीलिए उन लोगों के लिए कोई नई सृष्टि होगी।
गोलोक में सखिया भाव में वहाँ पर पहुँचे,
गोलोक में उन्हीं लोगों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसका प्रश्न का उत्तर दिए थे, वो ब्रज वृंदावन प्राप्त नहीं करेंगे
ना। नहीं, वो गोलोक वाला मिल जाएंगे,
केवल पारकीय भाव इस लोग जाएंगे।
हाँ नहीं, पारकीय नहीं, अब जो दास भाव को रक्त पितर के रूप में जाएंगे, सख्य भाव के अनुगमन करके जो जाएंगे राग भक्ति के अनुसार, जो वात्सल्य रस के
सब जाएगा,
वो सब ब्रज में।
जो महाप्रभु के भावों के जो जितने दिए उन्होंने
जैसे वल्लभाचार्य जी हैं, वात्सल्य रस के अनुसार में वहाँ जाएंगे,
ब्रज वृंदावन जाएंगे,
जाएंगे
और वो लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे।
वो तो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं को ग्रहण किया है और उसमें उन्होंने मर्यादा मार्ग और
पुष्टि
मार्ग, इसलिए कुछ भेद महाप्रभु के सब विचारों को लिया है, इसलिए उनकी गति हो।
अच्छा, वल्लभाचार्य को छोड़कर और कोई जाएंगे?
अब निम्बार्काचार्य का द्वारका का भाव है,
द्वारका का होते हुए भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं,
करते हैं, तो इसलिए उनकी भी कुछ ऐसे ही गति।
बेकार
तो ना
अन्य लोग।
पीछे बतलाना हमको, हम नहीं समझ पा रहे हैं ये कह सकते।
श्रील रूप गोस्वामी एंड ऑल दोस हु आर एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, श्रील स्वरूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी एटसेट्रा, इफ वी डोंट टेक देयर शेल्टर इट इज इम्पॉसिबल to serve Radha Krishna in Vraj Dham and attain Ragatmika Bhakti. O Bhaiya Man, O my dear mind, for this purpose of serving Radha Krishna, if you have, there is one word, intense desire to serve Radha Krishna in Vraj, you have to take shelter of Shri Swarup Damodar Goswami, Shri Rup Goswami, Shri Sanatan Goswami. You have to remember them. You have to pay your obeisances daily. In commentary, Shri Bhaktivinoda Thakur, he says, if anyone has taken initiation and shiksha in other sampradaya, you understand, not in our Gaudiya sampradaya, if they have taken initiation and shiksha in other sampradaya, it is impossible for them to attain Radhatmika Bhakti and to serve Radha Krishna in a conjugal mood in Vrindavan Dham, Braj Dham. Here there was a discussion between Savita Didi and Guru Maharaj. If there are other sampradayas like Balvacharya, etc., they are worshipping Krishna in different mood, what will be their status? So, Sri Guru Maharaj is saying that there is mentioning of Golok, the periphery of Golok Vrindavan.
Wrong. अब बल्लभाचार्य इत्यादि का बात चल रहा है, वो लोग तो जाएंगे ब्रज में, किंतु राधा जो कि स्वकीय भाव से उनकी उपासना करते हैं वो लोग गोलोक में जाएंगे।
बल्लभाचार्य दे आर वर्शिपिंग कृष्णा इन वात्सल्य मोड, दे विल गो इन ब्रज धाम बट अटेन वात्सल्य भाव. And those who are in other sampradayas like Radha Vallabh and all,
don't take the name.
Those who are worshipping in other sampradayas, Radha Krishna, in Braj Dham also, but they are not accepting or following Srila Rupa Goswami and Srila Chaitanya Mahaprabhu's process, they will attain. Golok is outer periphery of this Braj Dham, where Radha Krishna is there, but in little bit swargiya aishwarya bhav. This was the conclusion. So, this love, ragatmika bhav, given by Chaitanya Mahaprabhu, is so difficult to attain that there is only one point process for it, and this process is to surrender to the parampara, which has been mentioned by our acharya, which has been described by our acharya Swarup Damodar, Srila Rupa Goswami, Sanatan Goswami, then Srila Vishwanath Chakratipad, Krishnadas Kaviraj, Vishwanath Chakratipad, and this parampara has given us only this love which is most difficult to attain. Srila Rupa Goswami is telling us how we can attain this, how we progress in this process. And then there is a verse has been quoted here, that in our sadhana bhakti, it starts with Shraddha. Guru Maharaj is explaining us that Shraddha, then Sadhu Sangh, but before, how Shraddha will come, he is explaining. Shraddha comes when Sukriti arises. And how Sukriti comes? When we serve Krishna and all the things pertaining to Krishna, knowingly or unknowingly, then we attain many Sukritis. By dint of those Sukritis, we attain Shraddha. That is, that Shraddha, when it grows up, when it further moves, then we have Sadhu Sangh. And Srila Gurudev is explaining, in this Sadhu Sangh, one will accept Srila Gurudev, he will surrender to Guru in the line of Parampara, and then he will have the sang, and this bhajan will start. So he is explaining that there are three stages of bhakti. One is called sadhana bhakti, one is called bhav bhakti, and one is called prem bhakti. By sadhana bhakti, when it is perfected, one attains bhav, and bhav, when it becomes strong, it becomes prema bhakti. So these are the three stages. So there are many stages, starting from Shraddha, then then Shraddha comes so much strong that it becomes, that word is used here, Nirantar Mai. Without any break, all the unwanted desires come, then Nishtha comes, and after Nishtha, Ruchi, taste comes, and then comes the stage of Asakti, where a spontaneous love for Nami and Nam both arises in the heart. Nami means, and Nam means the name, and the Nami means the personality for which we are reciting their name. That is for Krishna and his name. When spontaneous love comes, then it is Asakti. When Asakti is perfected, when Asakti grows more, then it becomes Bhav. And Bhav, when it is intensified, then it becomes Prem. And hence, there are three stages of sadhana, of this process, which is called Sadhan Bhakti, Bhav Bhakti, and Prem Bhakti. Yes. Now, there are two types of sadhana bhakti. Vaidhi bhakti and Raganuga bhakti. There is a difference in these two types of bhakti from the very beginning, starting stage. When someone is doing Vaidhi bhakti, the attainment of prem is there also. But there, the attainment of prem is mixed with Aishwarya, opulence. And when some is, if a sadhak is adopting Raganuga bhakti, then the attainment is Ragatmika bhakti, the bhakti of Braj Dham, which is given by our Parampara.
Ab Vaidhi bhakti kisko kahte hain? Srila Rupa Goswami kahte hain, jatra raga anna अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शासनेव शासनेन एव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति उच्यते शास्त्रोक्त्या प्रबलया तन्मर्यादान्विता वैधि भक्ति रियम कश्चित् मर्यादा मार्गम उच्यते। इसका तात्पर्य है, भक्ति साधन में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, भक्ति के प्रति लोभ और शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर, या तो हरि कथा सुनते सुनते यशोदा मैया जैसा, सखाओं जैसा, गोपाल जैसे प्रेम प्रीति लाभ करने की लालसा जगी, एक ये, और शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर। कैसे शास्त्र? सब क्रियाओं को करते हुए, कर्तव्य को करते हुए, यदि कि माने माता पिता इत्यादि सकले सेवा करे हु कृष्ण चारु वर्णासी जदि कृष्ण नहीं भजे स्व स्व कर्म करते से रौरवे पड़ी मजे। ये शास्त्र के वचन है। सब काम ठीक करके, कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी यदि कृष्ण का भजन नहीं करता है तो रौरव नरक में जाना पड़ता है। ऐसे वचनों को सुन करके भक्ति में एक रुचि होती है, और दूसरी रुचि हरि कथा सुनकर ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को, प्रीति को पाने के लोभ जहां उत्पन्न होता है, उससे हरि भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति। जिस भक्ति के साधन में रुचि या लोभ द्वारा प्रवृत्ति न होकर के शासन शास्त्र शासन से यदि उत्पन्न होती है, उसे वैधि भक्ति। जहां लोभ ना हो वहां पर वैधि भक्ति। और जिसमें हरि कथा सुनकर, भागवत की कथा सुना और उसमें यशोदा मैया के पुत्र प्रीति को सुनकर वैसे ही प्रेम पाने की लालसा हुई, अथवा गोपियों का चरित्र सुना, असुर कर वैसे ही लोग होगा। तो एक वैदी भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति, इसी को कोई मर्यादा, वैदी भक्ति को कोई मर्यादा मार्ग और रागानुगा भक्ति को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। अब रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, इसको बतलाने के लिए रागात्मिका भक्ति को समझना होगा, तब उसकी अनुगा भक्ति कैसे होती है समझेंगे। विराजंतिम अभिव्यक्तिम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुषिता जासा रागानुगा उच्यते। रागानुगा विवेकार्थ आदौ रागात्मिको उच्यते, इष्टे सार्षकी राग परमावेष्टिता भवेत् तन्मयी जा भवेद भक्ति सात्र रागात्मिको दिता स काम रूपा संबंध रूपा चेति भवत विधा। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु के ये विचार फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं। ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों पुरुष स्त्री में, गो शुक इत्यादि पक्षियों में भी कृष्ण सुस्पष्ट रूप से जो भक्ति विराजमान रहती है उसे रागात्मिका कहते हैं। मनुष्यों की और पुरुषों की तो बात ही क्या, पशु पक्षियों का कृष्ण के प्रति आवेश और अनुराग है वो रागात्मिका भक्ति है। जिनकी आत्मा में अनुराग है रागात्मिका, रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसे रागानुग भक्त कहते हैं। रागानुगा भक्ति को अच्छी तरह से समझने के पहले रागात्मिका को समझो, क्या है, इष्टे सारसकी राग परमावेष्टिता भवेत्। इष्ट वस्तु कृष्ण के प्रति स्वाभाविक परम आवेश मूलक प्रेममयी तृष्णा को राग कहते हैं। इष्ट कृष्ण है, उनके प्रति स्वाभाविकी परम आवेश मूलक ममता से युक्त प्रेममयी तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, उसको पाने की लालसा, उसको माने जिससे पा लिया है वो राग है। रागात्मिक जनों में राग होता है, ऐसी रागमयी प्रबल राग से युक्त माल्य गुम्फन और जो सेवाएं हैं राधा कृष्ण जुगल की वो सब परिचर्या है, इस भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। यह रागात्मिक भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। काम रूपा भक्ति भी दो रूप में होती है, कौन कौन, एक काम रूपा और एक तत्त इच्छात्मिका, संभोग इच्छा मई और तत्त भाव इच्छा। इसमें क्रमशः भक्तियों का वैशिष्ट है। तत्त इच्छा मई जो भक्ति होती है वही है रूपमंजरी इत्यादि का भाव, उल्लासमय रति। रागानुगा के अधिकारी कौन है, इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, और यू शुड एक्सप्लेन।
हरे कृष्ण, वेरी डीप हिंदी। should be ready to understand. In our bhakti process, now Vaidhi bhakti is going to be described here. There are two tendencies that lead us into bhakti. Number one, when we hear sweet Hari Katha from someone advanced devotee, then we get greed to serve Krishna. This is one type of tendency. And there is another type of tendency. When we hear from scriptures and we come to know that what should we do, we should not do, then we accept Krishna Bhakti. There are two tendencies. So one quotation Srila Gurudev is giving for Vaidhi Bhakti. When we hear from scriptures and then we enter into bhakti, this is called Vaidhi Bhakti. How? What is scripture says? If you are performing your material duties perfectly, you are adopting pious activities in your life perfectly, but you are not doing Krishna bhajan, one will go to hell. This is the instruction of the scripture. So, hearing it, one gets encouraged and inspired that, oh, I should do bhakti of Krishna, only then I will be saved. And accepting this discipline of the scripture, one accepts bhakti. This is called Vaidhi Bhakti. And if someone is hearing sweet Harikatha, pastimes of Krishna from lotus mouth of advanced devotee,
from Srimad Bhagavat and Vaishnava Granth,
from Vaishnava Granth, and then a natural greed comes in him. The important point here emphasized is greed. If that greed comes in him, oh, I would also like to serve like Yashoda Maiya, like Sakha. That greed, if inspires someone, it encourages someone into bhakti, that bhakti is called Raganuga Bhakti. Therefore, bhakti starting from the scriptures discipline is called Vaidhi Bhakti, and bhakti starting from the greed is called Raganuga Bhakti. Now here comes the turn of Raganuga Bhakti. If we want to understand that what is Raganuga Bhakti, we have to first understand what is Ragatmika. I told you Hindi terms. You should try to assimilate it in your heart.
Sanskrit.
I am saying Hindi. Sanskrit term. Raganuga, Ragatmika, and Vaidhi. Vaidhi, I already Gurudev has explained. Now, here is the term named Raganuga. To understand Raganuga, we have to understand Ragatmika. Ragatmika Bhakti is already described in Bhakti Rasamrita Sindhu, and here something has been described from that book. Whatever Brijvasis have deep attachment for Krishna, Brijvasis means inhabitant of Braj, who are with Krishna, and all animals of Vrindavan, Braj, all Pakshi, birds of Vrindavan, whatever love and attachment they have for Krishna, in clear terms we should know it is Raga. Even Pakshi, birds, even animals, whatever attachment they have for Krishna, what to speak of Brajavasis, human beings, they all are having ragatmika attachment for Krishna. So, to explain it more, East Vastu ke prati, the thing which we love, if we have param aveshnai, fully absorbed, transcendentally absorption, mamta yuk, with deep mindness, you understand my word is mindness, it is mind, possessive attitude, with extensive possessive attitude, and prema mai Krishna. Krishna means
unquenchable.
Krishna means very, very, very intense thirst. And you are seeing water somewhere, even a drop of water, you feel like this Krishna. So when there is such prema Krishna for our East, for our lovable object, Prabal Rag, deep attachment, this is called Ragatmika. And if that is called Rag. And those who are having this Rag in this heart, in their heart, that is, they are called Ragatmika. And when they serve Krishna, that service, that paricharya, that is their ragatmika activities. They may be doing anything for Krishna. So this ragatmik jan, all those who are having this rag for Krishna, they serve Krishna with their intense love. If someone generates greed to serve like them, then that greed leads to raganuga. And this Raganuga Bhakti is also now categorized in two parts. One is Sambandhatmika and one is Kamanuga. Sambandhanuga and one is Kamanuga.
Sambandhanuga
and Kamanuga. Two. Ragatmik. There are two types of ragatmik. There are two types of loving personalities living in Braj. One is having love Sambandhrupa and other is Kamrupa. And then Kamrupa is also further categorized into two. One is Sambhog Ichhamai and one is Tattat Bhav Ichhamai. This terminology is not explained by Srila Gurudev, but he is explaining it that all our manjaris, rupa manjari, etc., they are having the ragatmik bhav in their heart, that is called tat-tat bhav icha mai. And this is also called ullas rati. And this rati is in those bhav ullas rati. And this rati is in all manjaris over there, and those who want to follow it, they will be called.
अब प्रश्न आता है, रागानुगा भक्ति के अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी है? रूप गोस्वामी का ऐसा सिद्धांत है, विशेष करके यदि किसी को लोभ उत्पन्न हुआ रागात्मिक भक्ति को पाने के लिए, उनकी परिचर्या के लिए लोभ उत्पन्न हुआ, तो लोभ की एक भी लक्षण है। लोभ के समय में हो सकता है कि उसमें कुछ काम हो सकता है, किंतु लोभ होने के बाद में वो सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। जैसे बिल्व मंगल, उनको वेश्या के प्रति आसक्ति थी, किंतु उसके संपर्क में आने से, उसकी गीतियों को सुनने से और उसकी भर्त्सना से उनको कुछ लज्जा महसूस हुई और उसको छोड़ दिया। किंतु तो अभी लोभ हुआ है उधर, किंतु अभी कुछ कामना है, फिर अपनी आंखों में घुसेर लिया और फिर वृंदावन गए। फिर कामना रही, कोई सांसारिक नहीं रही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी किसी ग्रंथ में, माधुर्य कादंबिनी या किसी में कहा है, मुझको याद नहीं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। वैसी हरि कथा सुने, उस हरि कथा में इतनी शक्ति है, दुराचारी से महादुराचारी व्यक्ति भी उसे सुनकर और उसको लोभ हो सकता है। एक आदमी विश्व सुंदरी से शादी करना चाहता है, अपनी योग्यता की तरफ में वो नहीं देखता है, लोभ है ना, किंतु उसको पाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये उसमें है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, रागात्मक निष्ठा जे ब्रजवासी जनादय तेषां भाव आपते लुब्धो भवेत अत अधकारी। केवल रागात्मिका भक्ति में निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भावों के अनुरूप भाव की प्राप्ति के लिए लालायित व्यक्ति, लोभी व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति मार्ग के अधिकारी। जिनको लोभ उत्पन्न हुआ है, उस लोभ के भी लक्षण हैं जो भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि ग्रंथों में। लोभ उत्पन्न होने के बाद में कैसा होता है वो बतलाए हैं, क्या वो वृंदावन में बास और शांति रबर्त काला। इसलिए विचार करना होगा, उपदेशामृत के श्लोकों को वो अपने जीवन में आचरण नहीं कर सका, भाई मैं तो नहीं समझता हूं कि उसको भाव लोभ उत्पन्न हुआ। उसके जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है उसमें वो सभी चीजें रहेंगी। मन शिक्षा का जो श्लोक है उसमें सभी प्रतिबिंबित होंगे। इसलिए कौन अधिकारी हैं, रागात्मिका भक्ति में निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भावों के अनुरूप भाव की प्राप्ति के लिए लोभी व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत और रसिक भक्तों द्वारा रचित तदर्थ प्रतिपादक लीला प्रबंध ग्रंथों में, गोस्वामियों के ग्रंथों में भी वर्णित नंद जसोदा आदि ब्रजवासियों के भाव तथा रूप गुण आदि जो कृष्ण के लिए सर्वेंद्रिय प्रीतिकर है और परमाकर्षक हैं, उनसे संबंधित मधुर लीला कथाओं को सुनकर बुद्धि उस विषय में शास्त्र और युक्ति की तनिक अपेक्षा नहीं रखती। ये लोभ का परिचय क्या है, उस समय लोभ उत्पन्न होने पर शास्त्र सुनकर बुद्धि और उस विषय में शास्त्र युक्ति की तनिक अपेक्षा नहीं रखता, उन भावों को प्राप्त करने के लिए भक्ति में स्वतः प्रवृत्त होना ही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। यह युक्ति नहीं देखता है, मैं योग्य हूं कि नहीं हूं यह भी नहीं, शास्त्र में जो कहा गया है उसको भी नहीं। बदी भक्ति के अधिकार में साधन भजन करते 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 भगवत रति आविर्भूत नहीं होती, तब तक वह शास्त्र और अनुकूल तर्क की अपेक्षा करता है। कैसे पाया जाएगा भाई, उसके लिए तो शास्त्र चाहिए। लोभ में नहीं है उसका कुछ स्थान नहीं है, किंतु लोभ उत्पन्न होने के बाद में कृष्ण प्रेम को, गोपी प्रेम को कैसे पाया जाएगा, इसलिए शास्त्रों को अपेक्षा है। कैसे उन्होंने प्रोसेस बतलाया, उस प्रोसेस को धारण करना होगा। रति उदित हो जाने के बाद वह उनकी अपेक्षा नहीं करता, किंतु रागानुगा भक्ति का अधिकारी ब्रज भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होते ही भक्ति में प्रवृत्त होने के प्रारंभ से कभी भी शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यही रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष है। वो उसकी लो उत्पन्न हो गया, शास्त्र की युक्ति और ये सब का वो अपेक्षा नहीं करता, किंतु जिस विषय में लोभ उत्पन्न होता है उसको पाना कैसे है, उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्र का अनुसंधान, शास्त्रोक्त साधनों का श्रवण कीर्तन इत्यादि करना। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि आदि ग्रंथों की, हमारे गोस्वामी लोगों के ग्रंथों की जरूरत है।
Gurudev is giving us barometer so that we can measure ourselves. Who is qualified for it? What is the qualification to enter into Raganuga practice? So, the important symptom in this regard is that when greed comes in heart, to serve like ragatmik parijan, to serve, to render our service as ragatmik are doing, when this greed comes in heart, then one is qualified for it. But is there any greed in heart for it or not? We should know it. There are symptoms for it. If those symptoms are not there, then greed may be already artificial. There must be genuine greed. When greed arises, it may be possible that in sadhak, some lust may be there, but later on, very soon, lust totally eradicates from the heart of a raganuga sadhak. For example, Bill Mangal Thakur, he used to go to a prostitute, Chintamani. He used to sing very sweet bhajan of Krishna. He was listening. At a time, he had lust for her. Then, after listening, and one day, he was very rudely chastised by that prostitute. And having heard piercing words from her mouth, he became oriented towards Krishna Bhakti. His greed for Krishna evoked in his heart. And he gave up Chintamani, that Vaishya prostitute, and he started towards Vrindavan with a greed to serve Krishna. But still some lust was in his heart. And then again he met another beautiful lady. He got attracted towards him. And finally, he pierced that, so he became blind, and then lust went away from his heart. He was totally clean-hearted person. So this is the example. Similarly, if greed is there, it shows some symptoms. What is that symptom? When we should not Krishna Chakravarti Pad is also telling in his script, in his probably Maharaj is saying Madhuri Kadambini, that this Harikatha is very powerful, very, very powerful. If someone hears it, then greed comes. And this greed can lead a person to highest stage. What is this greed? This greed knows no bond. Just if someone sees a beautiful princess and he gets attracted towards him, and the person who is heard about her or seeing her, maybe a sweeper. A sweeper gets attracted towards a princess. This is called greed. Greed does not understand whether I am capable or not capable. So, if we hear such Harikatha from advanced devotee's mouth and greed comes in heart, it is a very powerful thing. At the time, that person who is hearing Harikatha, he does not look into himself whether he is qualified or not qualified. But this Harikatha is very, very potent. And once greed comes in heart, then there are some symptoms also. What is the symptoms of those greed? So Gurudev says, they have quoted one verse that there's such person, he does not waste his single second. He is totally absorbed in cultivation of such bhakti. Actually, Gurudev is saying the symptoms of greed. If greed comes in one's heart, he will strictly follow Upadeshamrita. If someone is unable to follow Upadeshamrita, instructions of this Upadeshamrita, then that means greed has not come in his heart. If one is unable to follow instruction of Manasiksha, that means greed has not come in his heart. These are the symptoms of greed. So, the qualification is that when someone hears Harikatha from Srimad Bhagavat, from all those described by our Acharya, from advanced devotees' lotus mouth, and then one becomes very much inclined to serve Krishna in the fashion he has heard, in the fashion of Brajavati, at that time, this greed will lead to him Raghunuga Bhakti. And when this greed comes, he does not look into the instructions of the scripture. He does not take any shelter of the scripture. It is spontaneous in his heart and it is very much genuine in his heart. It is not dependent on the scripture's instruction. It does not require any yukti and yogita. Yukti means?
Logic.
Logic. It does not require any reasoning and it does not require any yogita, means qualification. It just happened to be in heart. And when it comes, then when he becomes very much intensely inclined towards the no process, how I will attain it. Then he goes and look into scriptures. Then when he goes to look into scriptures, he sees those scriptures which are quite supporting to increase his desire and cherished desire object. And then he consults Ujjwal Nilmani, etc. All these scriptures.
Srila Rupa Goswami ne भजन की परिपाटी के विषय में लिखा है, कृष्णम स्मरण जननचास्य प्रेष्टम निज समेहितम तत्तत् कथा रताश्चौ रतिश रतश्चौ कुर्यात् वासं ब्रजेशदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रजलोकानुसारत श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैद्यभक्ति उदितानि तु जन्यांगानि चा त्यानत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। अपने इष्ट प्रियतम नंदनंदन नवकिशोर नंदनंदन का स्मरण करो, और जिस प्रकार से इनका स्मरण करता है उसी प्रकार कृष्ण के भक्तों का जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है, जिसकी सेवा के प्रति तुम्हारा लोभ है, अपने सजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए सामर्थ्य रहने पर शरीर के द्वारा ब्रज में वास करो, जरूरी है। और नहीं रहो तो मन के द्वारा करो, किंतु एक दिन मन शरीर के द्वारा करना ही होगा जैसे तैसे, और भगवान इसकी सुविधा भी करा देंगे इस जन्म में या दूसरे जन्म में। ऐसी भक्ति रागानुगा भक्ति एक ही जन्म में नहीं होती, क्रमशः बहुत जन्म लगते हैं, किंतु उन्नत रसिक तत्वज्ञ भक्तों के संग में कुछ जल्दी से भी हो सकता है, किंतु एक ही जन्म में हो जाएगा ये नहीं। तो ब्रज में वास करना होगा, कैसे ब्रजवासियों की भांति जैसे रूप सनातन रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, वैसे ब्रज में रहना होगा। रागानुगा भजन की यही परिपाटी है। रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में जस्थावस्थित देह से अपने स्वजातीय भाव वाले कौन, मैया जसोदा सुबल सखा अथवा गोपियां, इन लोगों में से कि जैसा आपका समजातीय भाव है, उन परिकरों के ब्रज परिकरों के भाव के अनुसार कृष्ण प्रिया राधिका चंद्रावली ललिता विशाखा और रूपमंजरी आदि के अनुगत होकर और श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुसरण करते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कैसे, विशेष करके ये ब्रजवासी रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हैं, अपने साधक शरीर से जैसे साधन किया संख्या पूर्वक नाम गान आदि, और अपने सिद्ध स्वरूप से रूप मंजरी और रति मंजरी लौंग मंजरी के रूप में जो अष्टकालीय सेवा का चिंतन करते हैं उसी तरह से करना चाहिए सेवा दास्य भाव को। दास्य भाव के साधक को दास्य परिकर रक्तक पत्रक आदि के, सख्य भाव के अधिकारी सुबल श्रीदाम आदि के, वात्सल्य भाव वालों को जसोदा मैया नंद बाबा के अनुसार, और मधुर रस वालों को ललिता विशाखा इत्यादि रूप मंजरी के भाव बतलाए गए। सिद्ध देह से, पहले तो सिद्ध देह होना चाहिए, आएगा कैसे, कल्पना कर लो, वैसे कल्पना करने से नहीं होगा, साधन साथ करते 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 अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में गुरु की कृपा से कुछ उसका परिचय मिलेगा, या गुरु समझ करके उसको वैसा नाम एकादश भाव देंगे और पंचदशाएं भी देंगे, जो उसमें जैव धर्म में ये सब लिखे गए हैं। ये सब वैष्णव को जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों का मंथन करके भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब जैव धर्म लिखा, इसलिए रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे सारी जथावस्थी देह में साधन करना चाहिए और सिद्ध देह से उनका अष्टकालीय सेवा करना चाहिए, किंतु सिद्ध देह भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, भजन करो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में ही कहा है सिद्ध देह कल्पना करने से नहीं होगा, किंतु जो गुरु जैसा निर्देश करते हैं, शास्त्र जैसा निर्देश करते हैं, वैसा करने से होगा। इसमें भरत जिसका हम किसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे कल्पना करके भी कोई कल्पना करके भी भरत ऋषि का एक आदमी कल्पना करके भी ब्रज के भावों को करता है, धारण करता है, हमको याद नहीं आ रहा ठीक से, पीछे बतलाएंगे याद आ। बदी भक्ति में श्रवण कीर्तन गुरु पदाश्रय जिन भक्ति अंगों का वर्णन किया गया है, रागानुगा में भी उसकी उपयोगिता है। रागानुगा भक्ति में कुछ लोभ हो गया तो गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचो। बुद्धिमान साधक को अपने भाव के अनुकूल अंगों का आचरण करना चाहिए, प्रतिकूल अंगों का नहीं। अहंग्रहो उपासना, मैं ललिता हूं, नवदीप में ऐसा हमने देखा है, कोई पुरुष अपने को ललिता मान करके, मूछ कमा करके, बड़े बड़े केश रख करके, हाथ में चूड़ियां पहन करके, साड़ी पहन करके वो घूमती थी, भजन करती थी। यहाँ भी है। मत करो मुद्रा न्यास, मुद्रा नाश नहीं करना चाहिए। द्वारका का ध्यान मत करो, रुक्मिणी का पूजन इत्यादि, ये विरुद्ध अंग है। ये ब्रज भावक के अनुरागी साधकों के लिए विधेय नहीं, ये नहीं करना चाहिए। साधन दशा को पार करने पर भाव दशा आती है, उसका क्या है, कृति साध्या भवित साध्य भावास साधन विदा नित्य सिद्धस्य प्राक भावम प्राकट्यम हृदय साध्यता। भाव का दूसरा नाम रति है। रति के संबंध में रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल लीनी ग्रंथ में कहा है, ओ यू शुड एक्सप्लेन। देखो जो कोई शास्त्र का तत्व भी नहीं जानता, और राधा कुंड में चले जाओ, आठ आना पैसा दे दो और तुमको सिद्ध स्वरूप का नाम और सेवा परिपाटी सब एकादश भाव दे देंगे, भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा परिचय ये नहीं है।
यहाँ से जब जा रहा है तब उसका सारा ही सारा चेंज होता चला जा रहा है, यहाँ सब वो छोड़ के जा रहा है, भूल भी जा रहा है, तो ये नाम वहाँ कहाँ से पहुँचेगा।
इतना तो गुरु के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। गुरुदेव हो सकता है कि उसके भीतर के भावों को जानकर वो गुरुदेव भी वैसे उन्नत हो, हाँ गुरु जी ऐसे हो जैसे ध्यानचंद गोपाल गुरु, वो नाम दिया और वैसी साधना का लिए उनको लौटा दिया गृहस्थ में ब्रजनाथ को, और उनके मामा को विजय कुमार को वो भाव देकर के एकादश और श्रवण दशा इत्यादि सुना करके और उनको प्रार करा। इतना तो गुरु भी होना चाहिए योग्य, और उस गुरु पर ऊपर में विश्वास भी होना चाहिए।
जैसे किसी का जन्म हुआ, जन्म राशि से और जन्म के समय का वो नक्षत्र इत्यादि गिन करके वहाँ नाम के एक अक्षर से नाम लिया जा रहा है,
ये तो दीक्षा के समय में गुरु देते हैं।
तो वो जो नाम है उस नाम के ऊपर में वहाँ वर्णन है, इसलिए अक्षर से लेकर के वो नाम करते हैं, तो ये काल्पनिक
है। ये तो काल्पनिक है, किंतु कृष्ण नाम है ना, कृष्ण के ऊपर में नाम है, कृष्ण संबंधी नाम है।
गुरु जी तो भाई जी आत्मा का ही तो नाम देते हैं, आत्मा तो कभी मरती नहीं जन्मती नहीं है।
किंतु उसका असल जो होगा वो तो ब्रज भूमि में जब जाएगा होने से भी और जब यहाँ पर इतना पहुँचेंगे तब इस पर विचार करेंगे, अभी रहने दो। ठीक, गुरुदेव एकादश भाव और पंचदशा दे सकते हैं जैसे गोपाल गुरु जी ने दिया और दोनों को दिया, और उन लोगों को एक को सख में और एक को मधुर रस में प्रवेश दिया गया, और उसी भावों को लेकर के कुछ दिन तक समुद्र के तीर पर भजन करते करते हाँ तो उस समय साधक रहता है ना। ठीक,
जब वो दूसरी जगह ब्रज में पैदा होगा वो वाला ही नाम उसका चलेगा?
ना ना, कोई जरूरी नहीं है जो वही नाम रहेगा, कोई जरूरी। अब रामचंद्र दिया आपको गुरु जी ने तो यही नाम रहेगा आपका, होगा। चलो,
हरे कृष्ण, दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ कार्तिक एंड गुरुदेव एसोसिएशन एंड हिज स्वीट हरि कथा। सो मेनी थिंग्स आर डिस्कस्ड एंड कंक्लूडेड हियर। देयर इज प्रोसेस भजन की परिपाटी। नाउ इन दिस प्रोसेस इट इज दैट what is the attitude, how should we proceed in such Raganuga Bhakti? We should have deep attachment for Nanda Nandan, and to the same extent we should have attachment for Sajatiya person. Sajatiya means? In English the word is like-minded. But herein we should understand, when we heard Harikatha from advanced devotee and we got attracted towards certain type of service of a particular breath personality, those personalities are Sajatiya. So one should have deep attachment for Nanda Nandan and equally same attachment for Sajatiya, like-minded personalities, those who are here. Who are such like-minded personalities to whom we surrender our Gurudev, Shiksha Guru, Diksha Guru? And we should reside in Braj and try to cultivate those Braj Bhav. If not possible physically, then by mind. But finally, when we have to cultivate this bhav, we have to come and reside in Braj. It does not take place in one life, the Gurudev says. It takes many lives. And Krishna arranges for it. What does he arrange? He will arrange for our residing in Braj, if we desire it like this. So, if we surrender to Unnat Rasik Bhakt and our attachment for him increases equal to like Nanda Nandan, that is the progress. This is Bhajan Paripati. So it takes many lives, but by mercy of Rasik Vaishnava, there is concession. The things can take place quicker, but still some life will take. Are required. When we are in Braj and doing our bhajan, those who are having dasya bhav for it, they will follow in the footsteps of Rakshak Bhaktar. who are servant of Nand Baba and serving Nand Baba as servant and having attachment with Krishna. The same mood we should try to cultivate. Those who are having greed for Sakhya Bhav, friendly relationship, they will follow Sita, etc., friend of Krishna. Those who are having Vatsalya mood in their heart, they will follow Mother Yashoda, Nand Baba. And those who are having Madhurya Bhav, they will follow the footstep of Rati Manjari, Rupa Manjari. And for this, Sri Gurudev is explaining, we will follow the Bhajan Paripati of Raghunath Das Goswami.
Rupa Goswami, Raghunath.
The Rupa Goswami. How they were doing it? The process they were adopting, we should follow. From there, this sadhak dehe, they were doing sadhana, chanting the fixed number of rounds. And we will also, in the same fashion, try to cultivate our mood in Siddha Dev. Siddha Dev is our perfect constitutional position. Trying to adopt according to the mood of our constitutional position within ourselves, we will do bhajan, and from our sadhak body, external this body, we will follow the sadhan paripati, sadhan process of Sri Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, that is chanting fixed number of rounds, giving dandavat to Vaishnavas, and so many other things. But now here question arises, that as regards doing our bhajan within ourselves, from our constitutional position, from our siddha body, should we imagine for it? Should we have got some scope for the speculation of such constitutional body? No, there is no scope of imagination in this regard. Srila Gurudev, when we will do intense sadhana, he will reveal within ourselves that constitutional position. It has so many different aspects. Name, dress, etc. That is called Ekadash Bhav. And Panch Dashain, five different stages. So, this will be given by Srila Gurudev. Unless Srila Gurudev gives, we cannot imagine our constitutional position. In Jaya Dharma, Srila Bhakti Vinod Thakur, taking essence of all the scriptures, which scripture? Scripture written by our Goswami, he has taken essence of all those scriptures and has very vividly narrated in this regard. He is saying that so far, Srila Gurudev revealed to us, we should not imagine our constitutional or perfect body in within ourselves. So, those who try to live in Braj, saying that I am Lalita Sakhi, they just shave their themselves and take long hair and wear sari and become Lalita Sakhi. They all are not sadhak. They are bogus. Now, there was a question that when Srila Gurudev, he gives us name and all other things, he will give after seeing our constitutional position. So only then we can do bhajan in the mood of our Siddha Dev. To acquire it, what should we do? Here comes the point. There are many processes described, limbs of bhakti in Vaidhi Bhakti. Some of them we have to take and adopt very seriously. Those which are quite in accordance with our cultivation of Braj Bhav, we should acquire. And those who are opposite to it, we should give up. Like mudra, nyas, Anurupasana, Rukmani, and Dwarka Bhav, all these worshipping, which has been mentioned in 64 limbs of bhakti, we should give up. And all those which are mentioned in accordance to our Radha-Rupa Bhav, we should take it seriously. When someone does sadhana, and when this sadhana is perfected, he acquires the stage of bhav. And this bhav is also called rati. Another name of bhav is called rati. So, the Gurudev is not further explaining.
साधन दशा के पार होने पर जब साधन दशा हम पार करते हैं तो भाव दशा आती, भाव का नाम ही रति है। यही रति परिपक्व होने पर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आदि आगे तक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए गन्ने का बीज, फिर उसे रस, गुड़, खांड, शर्करा, सीता, सीतोपल, रस से लेकर के ये सभी चीजें रस ही है। उसी प्रकार प्रेम से लेकर, स्नेह से लेकर महाभाव तक सभी को प्रेम से ही कहा जाता है, किंतु प्रेम कहने पर भी उसका अलग अलग कुछ वैशिष्ट है। तो कृष्ण की भक्ति भी वैसे ही होती है। निष्पक्ष और गूढ़ रूप से विचार करने पर यह कहना होगा, ब्रज का श्रृंगार रस संबंधी प्रेम अन्य संप्रदायों में नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का विचार कि ब्रज का श्रृंगार रसमय भाव अन्यत्र कहीं भी संप्रदाय में नहीं है। यदि है भी तो बहुत थोड़ा सा है, यदि थोड़ा सा, इसलिए कोई स्वकीय भाव के रूप में, कोई कुछ रूप में थोड़ा। इसलिए चैतन्य सिद्धार्थ गोस्वामी ने ब्रज को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र स्वरूप रूप रघुनाथ, सनातन आदि गोस्वामियों को शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करने का उपदेश दिया है। इन्हीं लोगों के हृदय में ये स्वभाव है। और जन्म जन्म माने कि एक जन्म में प्रेम लक्षणा भक्ति रागात्मिका सिद्ध नहीं होती है, अनेक जन्मों में होती है। और यदि भगवत के कृपा होने से भी थोड़े से ही, किंतु लगेगा बहुत, इसमें भी 10-20 जन्म लग सकते हैं, इसको बहुत ही कम समय में समझो। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु बोल दी।
साधन दशा पार करने के बाद व्हेन अ साधक आफ्टर डूइंग साधन He transcends that stage. Then he enters into the stage of bhava. And this bhava is called rati. And when this bhava or rati when it is perfected, then attains prem. And then this prem also further advances in different stages. Prem, महाभाव एक्सेट्रा, दीज डिफरेंट स्टेजेस आर मेनी टाइम कॉल्ड फ्रेम ओनली, बट एवरी स्टेज हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशलिटी। जस्ट एज इफ वी हैव जूस ऑफ शुगर केन, दिस जूस इट इज द बेस बेसिक, and then we heat it, it becomes good. Then we again further heat it and cleanse it, it becomes sugar, and then sugar candy, that is called mishri, sitopaladi. These are 6-7 different stages. The basic thing was the juice of sugar candy. Similarly, the basic thing is love, prayer. प्रेम बट दिस प्रेम हैज डिफरेंट स्टेजेस एंड इट गोज अप टू द स्टेज ऑफ महाभाव ये बोलशील भक्ति विनोद ठाकुर हियर स्टेज दैट इफ वी ऑब्जर्व एंड स्टडी इट निष्पक्ष भाव इम्पार्शियली वी विल सी दैट इज श्रृंगार रस of Radha Krishna, the highest mellow of conjugal divine love is not found in any other sampradaya or any other places. If at all seen, it's very less and rare. Therefore, if anyone is interested to cultivate this mood, he has to take shelter of as already stated earlier in the start of this class, take shelter of Swarup Goswami, Swarup Goswami. We have to accept them and their instruction. Then we will follow and cultivate. It will take janam janam. Janam janam is many lives we have to wait for. And if we take shelter of such advanced Rasik Vaishnava, the process may become quicker. Still, it will take 10 lives, 20 lives, like that. And if it takes 10 or 20 lives, you should think that it is immediate. Do not think that it is too long, because things are very difficult. God Premanande.
Agamikal Param Pujyapat Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pas Sishmat Bhakti Raksha Siddhar Goswami Maharaj Ji Ka आविर्भाव होगा. क्लास जैसा हम लोगों का होता है वैसा ही होगा. क्लास के बाद में यहाँ पर उनका चित्र फोटो यू शुड कलेक्ट फ्रॉम एनीवेयर. माय गुरुदेव आल्सो प्रभुपाद इफ थ्री ऑल आर हियर सो यू कैन टेक देम डाउन और एनी पिक्चर. और उसके बाद में उनके संबंध में हम लोग कुछ बोलेंगे 10 बजे तक. कथा के बाद में हमारी कथा के बाद में 9 बजे 7:30 बजे 7 बजे समाप्त हो जाती है. इसके बाद में 9 से 10 बजे तक उनके संबंध में कुछ बोलेंगे यहाँ. और इसके बाद में तीर्थ महाराज अपने कुछ लोगों के साथ में चले जाएंगे आनंदधाम में, वहां पर अभिषेक कराएंगे. और मैं भी थोड़ी देर के बाद में वहां पर पहुंच जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा. सब लोगों का प्रसाद यही होगा दोपहर को. और बस वहां से आएगी 3 बजे के करीब और सब लोग यहां से वहां जाएंगे. नगर संकीर्तन होगा और नगर संकीर्तन के बाद में 8 बजे प्रसाद पा करके फिर यहाँ आना है. दूसरे दिन यहाँ से रामघाट और बिहार बन